اسٹیج پر تشریف رکھنے والے سیاسی زعما اور علماء کرام، خواتین و حضرات، میں اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کو، جو وقتاً فوقتاً آزادی فلسطین اور بازیابی قدس کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے آج ایک عالمی کانفرنس یہاں کراچی میں منعقد کی ہے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت پہ منعقد کی گئی ہے جب ہم انتہائی غمگین ہیں اور ہمارے دل رو رہے ہیں. ہماری آقا سیدہ بی بی زینب علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ حملہ ہوا ہے، انہی طاقتوں کی جانب سے جو پشت پناہی کرتی رہی ہیں دنیا اسلام میں. یہ اسرائیل کا خنجر جو گھونپا گیا ہے، وہی طاقتیں اس تمام خانہ جنگی کے پیچھے ہیں، اور وہی طاقتیں عقائد کے نام پہ دنیا اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے اپنی گھناؤنی سازش کر رہی ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یاد کرتا ہوں سید بی بی علیہ السلام کے خطبے کو جو دربار یزید میں آپ نے دیا. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا ظالم ترین شہنشاہ طنز کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور آپ جواب دیتی ہیں کہ میں تو اللہ کے کام میں بہتری دیکھتی ہوں، برکت ہی برکت دیکھتی ہوں، بے شک اس نے ہمارے ذکر کو بلند کیا. اور یزید تیری تدبیر ناقص ہے، اور جلد ہی تو دیکھے گا کہ تیرا نام و نشان تک مٹ جائے گا. ظالموں کی تدبیر ناقص ہوتی ہے، اور وقتی کامیابی سے یا وقتی تسلط سے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آواز حق دب گئی. امید فاضلی صاحب نے اپنے ایک مرثیے میں ایک بند کی بیت کہی ہے کہ اس خطابت نے حکومت کا فسوں توڑ دیا چند الفاظ میں، تاریخ کا رخ موڑ دیا. اب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو سازش ہے دنیا اسلام کو پارا پارا کرنے کی اور ایک صہیونیت کا ملک بنانے کی اسرائیل، کہیں یہ ہمارا امتحان تو نہیں ہے؟ اور کہیں خدا نے اپنی برکت سے اور اپنی حکمت سے دنیا اسلام کو یہ موقع تو فراہم نہیں کیا ہے کہ وہ سوچیں اور یہ جو جسد پارا پارا ہے اس کو یکجا کریں اور ایک قوت میں اپنے آپ کو ڈھالیں؟ کہیں پوری عالم انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش تو پیدا نہیں کی کہ تمام دنیا میں وہ لوگ کہ جو امن کی بات کرتے ہیں، جو انسانی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو جس کا وطن ہے وہاں اس کو حکمرانی کرنے کا حق ہے، کہیں پورے عالم انسانیت کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ हो यही रहा है। मुझे याद है कि किस तरीके से मैं 2.5-3 साल की उम्र थी मेरी, और ये जो एक इसराइल बना था और फलस्तीनियों को उनके घरों से बेघर किया गया था और नई वहाँ बस्तियाँ बनाई गई थी, मेरी वालदा मरहुमा हमें नाश्ता बना रही हैं। उस ज़माने में वो लकड़ियों के चूल्हे होते थे और कोयला होता था, और कोयले से नक्शा बना के हमें बता रही हैं कि देखो ये फ़लस्तीन है, ये मुसलमानों का मुल्क है, इसको इस तरीके से तोड़ा गया है, यहाँ से मुसलमानों को निकाला गया है। तो ये एक सानिहा था जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ दिया था कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को बता रही थी कि ये जुल्म हुआ है और इस जुल्म को हमें ठीक करना है। उसके बाद हमने देखा जंगें हुई और अलकुद्स दुश्मनों के कब्जे में चला गया। एक दफ़ा फिर उम्मत मुस्लिमा का ज़मीर झंझोड़ा गया और लाहौर में 1974 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुनक़िद की। मेरी मालूमात बहुत कम हैं तारीख़ के बारे में, लेकिन शायद ये अकेला मौका था तारीख़ इस्लाम में जब पूरी दुनिया इस्लाम के तमाम मुल्कों के सरबराहान एक छत के नीचे जमा हुए और मिल्लत इस्लामिया ने मिल्लत की तरह सोचना शुरू किया। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रोग्राम बनाया गया दीगर बातों के अलावा, उसमें अलकुद्स की बाजियाबी को मरकजियत दी गई और ये पूरे आलम इस्लाम का एक मुत्तफ़िका मुतालबा बना। अमरीकी साम्राज्य ने किस तरह से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी राह से हटाया, किस तरह से शाह फैसल सऊदी अरब के हरचंद के शहंशाह थे लेकिन अलकुद्स के मामले पे अमरीकनों के सामने खड़े हुए थे, किस तरीके से उनको शहीद किया गया और किस तरीके से 40 साल तक मुअम्मर कज़ाफ़ी का पीछा करने के बाद उनको शहीद किया गया। मुझे बड़े हंस के मेरे एक मोहतरम कह रहे थे कि आज शायद फ्रीडम फाइटर वो होते हैं जो अमरीकी हथियारों से लड़ रहे हैं कि जिनको अमरीका मुसल्ला कर रहा है। लेकिन ये गुज़र जाने वाली बात है, अब वक्त का धारा पलट रहा है, अब एक नई जाग और नई सोच पैदा हो रही है। और हम सवाल करते हैं उनसे जो बड़ी शद्दोमत से कहते हैं कि मज़हबी इंतहा पसंदी और मज़हबी तासुब ये गलत है, कि वो एक तवील अरसे से एक मज़हबी इंतहा पसंद रियासत की हर तरीके से इमदाद क्यों कर रहे हैं, और क्या साम्राज्य का पैमाना जहां उनके मफादात हों तो कुछ और होता है और जहां मज़लूमों के हकूक़ हों वहां कुछ और होता है। और ये सवाल आज हम यहाँ नहीं उठा रहे बल्कि तमाम दुनिया में ये सवाल उठाए जा रहे हैं, खुद अमेरिका में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुद यहूदी मुफक्किरीन कह रहे हैं कि इसराइल का क़याम गलत है और इस मसले को हल होना चाहिए। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिन्होंने कि बड़ी कोशिश की मसले फ़लस्तीन पे, 13 या 14 किताबें लिख चुके हैं इस मसले के ऊपर, जिसमें उन्होंने खुल के फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत की है। ये तब्दीली आ रही है। अभी हाल में ही मैं यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पास की जिसमें के मजम्मत की गई इसराइल जो मकबूजा इलाकों में बस्तियां बना रहा है उसकी। तो आलमी राय अम्मा इस मसले पे अब सोच रही है और पलट रही है, क्योंकि जुल्म को बातिल को ख़त्म होना है और उसको उसी तरीके से ख़त्म होना है जिस तरीके से तारीख में ये बार बार ख़त्म होता आया है। और इसलिए मैं तमाम दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने फ़र्ज से ज़र्रा बराबर कोताही ना बरतते हुए अल-कुद्स की बाजियाबी को, क़िबला अव्वल की बाजियाबी को अपना नस्बुलैन बनाते हुए और अपनी कोशिशों को मरबूत करते हुए और इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमें पूरी कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि इस जायज़ मसले पे, मज़लूमों के हक़ के मसले पे, इस हक़ के मसले पे कि किसी को भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो या कोई भी हो, उसका ये हक है कि उसे अपने घर में रहने का हक हो और उसको निकाला नहीं जा सकता। हम आलमी राय अम्मा को हमवार करें और हम सबको बताएं कि किस तरीके से ये साम्राज्य ने एक खेल खेला और किस तरीके से एक नफ़रत का, तासुब का बीज बोया और कितनी खूनरेजी इसकी वजह से हुई। और जब तक इसराइल बाकी है उस वक्त तक ये नाइंसाफी बाकी है। दुनिया को कोई ना कोई हल तलाश करना होगा और हल सीधा है। इसराइल के नाम से कभी कोई मुल्क नहीं था। ये 1940 की दहाई की बात है कि इसराइल को कायम किया गया। जो मुल्क था वो फलस्तीन था, अंबिया की सरजमीन, जो कि हर दौर के अंदर, तारीख के अंदर हज़ारों साल से फलस्तीन कहलाती थी। और इस फलस्तीन के अंदर मज़हबी रवादारी का एक अजब नमूना देखने में आता था कि वहाँ ईसाई भी इबादत करते थे और उनके साथ खड़े होके मुसलमान भी इबादत करते थे, यहूदियों की अपनी इबादत गाहें थी और कोई किसी से उलझता नहीं था। जिस वक्त बैतुल मक़दस दूसरी खिलाफत के ज़माने में फतह हुआ और मौला अली ने मशवरा दिया हज़रत उमर को कि आप खुद जाएं अगर वो आपको बुला रहे हैं और बात करें, और आप तशरीफ़ ले गए वहाँ, तो आपने खुसूसी एहतियात ये की कि उनके गिरजा से निकल के नमाज पढ़ी। वो इसलिए कि कल को कहीं उनके गिरजा को तब्दील ना कर दिया जाए मस्जिद के अंदर। तो ये मज़हबी रवादारी थी जो इस सरजमीन के अंदर बढ़ती जाती थी और ये पैगाम था इस्लाम का, मज़हबी रवादारी का, कि जो हमले के आगे बढ़े और जो फलस्तीन के अंदर सबसे आगे हमें नज़र आता था। वो लोग जो कि कहते हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी जमहूरी ममलिकतें बनाई हैं जिसमें बिला लिहाज अकीदा सबको मसावी हुकूक हैं और जहां इंतखाबात के ज़रिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, जहाँ मुंतखब ऐवान हैं और मुंतखब ऐवान वो अपने मुल्क के कवानीन बनाते हैं, और जो सैकड़ों साल से ये कहते आए हैं कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं और हम अकायद की बुनियाद पे इंसान और इंसान की तफरीक में नहीं करते, वो आखिर क्यों ये बात नहीं कहते कि फ़लस्तीन जहाँ सैकड़ों साल से, जहाँ 1500 साल से किसी किस्म की मज़हबी मनाफरत के बगैर, किसी किस्म के तासुब के बगैर 3 बड़े मज़ाहिब के मानने वाले रहते रहे थे, उसको फिर एक जमहूरिया बनाया जाए जहाँ पे हर मजहब के मानने वालों के बराबर हुकूक हों, जहाँ पे वो लोग आपस में बैठ के अपना आईन बनाएं, अपने कवानीन बनाएं, और जहाँ फिर से एक बार वही दोस्ती और भाईचारा हो और बर्दाश्त का माहौल हो जो कि इस सरजमीन का सैकड़ों साल तुर्रे इम्तियाज रहा है। हो सकता है कि यह हल ना हो सकता है कि कोई और हल हो, लेकिन ज़मीर आलम को अब सोचना पड़ेगा कि ये मसला हल तलब है, और आखिर कब तक हम दुनिया का निज़ाम इस तरीके से चलाएंगे कि ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और अमेरिका के हवारी पूरी आलमी राय आम्मा को ठुकराते रहें। जिस वक्त उन्हें हमला करना होता है कहीं, तो अक़वामे मुत्तहिदा की तमाम क़रारदादें पसे पुश्त डाल दी जाती हैं। एक अमेरिका और एक इसराइल, ये दो ताकतें ऐसी हैं कि जो अक़वामे मुत्तहिदा की हर ऐसी क़रारदाद को कि जो उनके मफाद के ख़िलाफ़ है पसे पुश्त डाल देती हैं, और कोई उसके ऊपर किसी कानून से, किसी इखलाकियात से कोई उसके ऊपर फैसला नहीं होता और कोई अमल दरामद नहीं होता। मैं मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ से एक आवाज़ उठी है, और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क से इस आवाज़ की बाजगश सुनाई देगी, और ये तमाम आलमी बिरादरी को पैगाम जाएगा कि हम जारहियत नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, और अगर दुनिया में अमन कायम होना है तो हमें ऐसी तमाम क़वतों की मजम्मत करनी पड़ेगी और उनको मुकाबला करना पड़ेगा जो हथियारों के ज़रिए अपना तसल्लुत दूसरी अकवाम पे रखना चाहते हैं, क्योंकि अब इंसानी शऊर इतना आगे बढ़ चुका है कि हथियारों की ज़बान नहीं समझी जाएगी, अक्ल की ज़बान समझी जाएगी, अदल होगा, इंसाफ होगा। मैं गुजारिश करूँगा आज के मुंतज़मीन से और आप तमाम हजरात से कि जहाँ आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस अहम मसले पे कर रहे हैं, और जहाँ यकीनन आप करारदाद लाएंगे आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से, वहाँ एक करारदाद सैयदा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पे हमले की मज़म्मत, और हम सब कहें कि ये दुख भी सारे आलम में इस्लाम का दुख है, और हम इस यकीन और एतमाद का मुजाहरा करें कि जिनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया उनका जिक्र ताकला क़यामत बुलंद से बुलंदतर होता रहेगा। इस फसाहत ने हुकूमत का फसूं तोड़ दिया, चंद अल्फाज में तारीख का रुख मोड़ दिया। शुक्रिया बहुत।